ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी एक घंटे से ज्वालामुखी योग कर रहे थे और सचमुच मैं भी जब हॉल में आई तो मुझे भी ज्वालामुखी योग की अनुभूति हुई। आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप गहन एकाग्रता में थे। अभी हम पैनल डिस्कशन करेंगे और आज के पैनल का हमारा विषय है योग और धारणाओं का आपस में क्या कनेक्शन है। हम सब जब बाबा के बच्चे बनते हैं और जब 7 डेज कोर्स करते हैं तो प्रदर्शनी में एक चित्र है, योगी जीवन के स्तंभ, अर्थात एक सच्चा योगी बनने के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। तो उस चित्र में तो 4 चीजें ही दिखाई हैं, प्रतिदिन क्लास करना, शुद्ध भोजन करना, संग अच्छा रखना और जीवन में मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करना। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी धारणाएं हैं जो हमारी योगी जीवन को प्रत्यक्ष करती हैं। उनको देख करके लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ विशेष हैं, इनके जीवन में कुछ विशेष आचरण है, विशेष धारणाएं हैं। अगर वो जीवन में ना हो और हम यूं ही क्लास में जाते रहें, योग भी करते रहें, लेकिन जीवन में कोई बदलाव ही नहीं, जीवन में गुणों का कोई प्रकटीकरण ही नहीं, तो प्रभावशाली जीवन नहीं बनता। तो आज के इस पैनल में हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें घर परिवार में रहते हमें धारण करना है, अपने प्रैक्टिकल जीवन से उनको प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि हम समाज के बीच में रहती हैं, परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं और ये भी देखने में आता है कि कोई भी बाबा का बच्चा जब ज्ञान में जाता है तो लोग उसको 4 आंखों से देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर खास अटेंशन देते हैं। ये कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, आपके बारे में आपसे ज्यादा आपकी सराउंडिंग के लोग जानते हैं। तो ऐसे में हमारा प्रैक्टिकल जीवन एक उदाहरण मूर्त जीवन होना चाहिए। वो हमें जब भी देखें, जहां भी देखें, तो उनको लगे कि हाँ ये जो कहते हैं वो कर रहे हैं, इनकी मुरली में जो आता है वो इनके जीवन से प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस विषय को लेकर के हम आज हमारे कुछ सीनियर भ्राता जी हैं, हमारे भ्राता मोहन सिंगल जी पधार गए हैं। भ्राता जी आइए, आप सभी एक हाथ की ताली से भ्राता जी का स्वागत करेंगे। आप सब आदरणीय भ्राता जी को जानते होंगे, बहुत बार मिले भी होंगे, बहुत बार क्लासेस भी आपने भाई साहब से किए हैं। आप सन 1962 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आपने बाबा और मम्मा से बहुत सुंदर पालना ली और उस पालना के अनुभव आप सुनाते रहते हैं। आप वर्तमान समय राजयोग शिक्षा और शोध संस्थान की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी आप सदस्य हैं। वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग के आप चेयरपर्सन हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी कोऑर्डिनेटर हैं और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स प्रभाग की जो शूज न्यूज है उसके आप संपादक हैं। आपने अनेक पर्यावरण जागृति तथा आपदा प्रबंधन अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। अनेक पदयात्राओं का भी आयोजन किया है। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई प्रदर्शनियों का निर्माण किया है, कई शहरों में स्पिरिचुअल आर्ट गैलरीज का निर्माण किया है। USA, UK, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, तंजानिया, कैरेबियन कंट्रीज, इनमें भी आप ईश्वरीय सेवा अर्थ लोगों को लाभ देने गए हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में ग्रीन आइडल अवार्ड भी आपको राजस्थान के राज्यपाल से मिला है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी हमारे साथ हैं पैनल डिस्कशन में। आप सबको तो अभी हमारी दूसरे जो पैनलिस्ट हैं हमारी आदरणीय गीता दीदी वो भी अभी हमारे बीच आने वाली हैं। जब तक आदरणीय गीता दीदी हमारे बीच आई तब तक हम 2 मिनट फिर से बाबा की याद में बैठते हैं।
उनके लिए ही है इस संग मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे नौचावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही,
हमारी पैनलिस्ट गीता दीदी हमारे बीच पधार गई हैं। हम एक हाथ से दीदी का स्वागत करते ही हैं। आज का जो हमारा विषय है, योग और उसके साथ धारणाओं का आपस में क्या कनेक्शन है, तो ऐसे तो हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते ही हैं कि योग का आधार पवित्रता है, लेकिन पवित्रता के भी बहुत गहन और सूक्ष्म रूप कौन कौन से हैं। केवल सेलिब्रेट रहना ही पवित्रता नहीं है, तो उन सूक्ष्म रूपों पे सबसे पहले गीता दीदी प्रकाश डालेंगे कि योग के लिए हमें पवित्रता की कौन सी गहन और कौन सी सूक्ष्म धारणाएं करनी है। गीता दीदी से तो आप बार बार मिले हैं, तो आप सब जानते ही हैं, दीदी को जानते हैं ना सभी, आपकी भट्टी की कोऑर्डिनेटर है। हाँ।
ओम शांति। हमें योग लगाना है सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता के सागर बाबा के साथ, तो स्वाभाविक है कि पवित्रता के सागर बाबा से योग लगाना है तो हम आत्माओं का भी पवित्र बनना बहुत जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। इसलिए बाबा ने प्रथम पाठ भी यही सिखाया कि आप आत्मा है, सभी आत्मा है, हम एक बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो ये रूहानी दृष्टि रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कहा जाता है कि मन में जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे हमारे मन में या बाबा रह सकता है या काम वासना रह सकती है। तो अब संगम युग में हमें ब्रह्मचर्य धारण करना है, पवित्रता के व्रत का पालन करना है और सबको रूहानी दृष्टि से देखना है। तो ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है, परंतु ब्राह्मण जीवन में हमें संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रोध पर भी जीत पानी है, क्योंकि क्रोधी मन एकाग्र नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से चलाओ, प्यार से कामकाज करो। क्रोध करते हैं तो हमसे सब दूर भागते हैं, आत्माओं का प्यार हमें नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार पवित्रता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या वैर द्वेष भय अलबेलापन सभी विकारों पर हमें विजय पाना है, तभी हम देवता बन सकते हैं। देवताओं की महिमा में क्या गाया जाता है, क्या गाया जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए विकार माना विकार, हर विकार पर विजय पाना है, हर कर्मेंद्रिय को पावन बनाना है। इसलिए बिना पवित्रता योगी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विकारी मन बाबा से लग नहीं सकता है। विकारी मन तो देह भान में और देहधारियों में आकर्षित रहता है। इसलिए अगर लक्ष्य है योगी बनना है तो पवित्रता उसका फाउंडेशन है।
पवित्रता योगी जीवन का फाउंडेशन है। तो पवित्रता मन के संकल्पों की, पवित्रता भोजन की, पवित्रता संग की, अनेक प्रकार की पवित्रता हो गई ना। और पहले दिन जब हमारा क्लास हुआ, निर्मला डॉक्टर दीदी जी ने जब क्लास कराया तो कई तरह की पवित्रताओं की उन्होंने चर्चा की थी, भोजन की भी बहुत अच्छे से चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि आजकल ऐसे बैले डांसर हैं जो शरीर को स्लिम रखने के लिए भोजन खाते हैं और उंगली डाल के वोमिटिंग कर देते हैं, मतलब खाए बिना रह नहीं सकते लेकिन मोटा भी नहीं होना चाहते। तो उन्होंने बड़ी वर्तमान समय क्या क्या हो रहा है उसकी बातें सुनाई थी। जो इंद्रियों पे नियंत्रण करके हमें काम करना चाहिए उसको हम भोजन को बर्बाद करके कर रहे हैं। तो अगला सवाल भ्राता मोहन सिंघल जी से है कि भोजन की शुद्धि योग में किस प्रकार मदद करती है? बाबा ने हमें भोजन की शुद्धि के बारे में क्यों बताया और किस किस प्रकार से हम भोजन की शुद्धि को अपनाएं, भले विपरीत परिस्थितियां हो तो भी हम कैसे दृढ़ रहें, इस पे प्रकाश डालेंगे भ्राता जी।
भारत में प्रसिद्ध है जैसा अन्न वैसा मन, तो इसीलिए आप सब तो बाबा के बच्चे बैठे ही हैं। शुरू से ही जब से ज्ञान में आते हैं अन्न की शुद्धि समझते ही हैं कि केवल अन्न का मतलब, शुद्धि का मतलब केवल वेजिटेरियन फूड ही नहीं, शाकाहारी ही नहीं, बल्कि जो ईश्वरीय स्मृति में बनाया गया हो, पकाया गया हो, लाया गया हो, परोसा गया हो और स्वीकार किया गया हो, खाया गया हो आदि आदि, तो उससे फिर वैसा ही मन बनता है, अर्थात विचारधारा वैसी ही होती है। तो अन्न की विचारधारा, ये तो अन्न की बात हुई क्वालिटी की, लेकिन साथ ही साथ मुझे याद आता है, मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला 62 से लेकर 69 तक। तो बाबा अक्सर कहा करते थे, क्योंकि मधुबन में तो पार्टियां आती थीं और बाबा भी मिलते थे मधुबन में, बाबा को भी होता था बच्चे दूर दूर से आए हैं, ये बनाएं ये खिलाएं, लेकिन साथ ही साथ बाबा कहते थे भोजन वो ही शुद्ध है, हाँ, न बहुत ऊंच न बहुत नीच, कम। अर्थात ऐसा भी नहीं कि अच्छा अगर बना है तो हम थोड़ा ज्यादा खा लें, और अगर हमारे अनुकूल टेस्ट के अनुकूल नहीं बना है तो हम उस दिन न खाएं, कम खाएं, उसको त्याग दें, नहीं। जीभ का स्वाद की तरफ ध्यान न देके बाबा के भंडारे का भोजन है उसको स्वीकार करें, यह भी अन्न की शुद्धि में आता, नहीं तो वो अन्न का अपमान हो जाता है कि टेस्ट के अनुकूल नहीं है, उसको हम न खाएं, स्वीकार न करें। तो अन्न के साथ ये मन की विचारधारा और मन जो है ये ही अल्टीमेटली हमें संपूर्णता कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाता है, मन की अवस्था, और ये इसी में ही कमाल है। वैसे कहा जाता है तन मन धन संबंध आदि आदि सब में शुद्धता लानी है, सब में पवित्रता, जैसा अभी आपको बताया भी गया और आप सब जानते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली यह मन ही है। मन अति सूक्ष्म है और बाबा ने तो और गहराई में लेते गए हैं कि अपनी वृत्ति को, स्वपन भी आपके इतने शुद्ध हों वो भी पवित्रता में आते हैं। इसीलिए मन के संकल्प की पवित्रता और साथ में स्वपन की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्न का जहाँ एक तरफ स्थूल रीति से कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, और ये भी कहा गया है अल्टीमेटली, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनने का, संपूर्ण फरिश्ता बनने का, अव्यक्त बनने का, तो मन के लिए ही कहा गया है मन जीते जगत जीत। और ये हमें प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा में देखने को भी मिला, क्योंकि वैसे बाबा से हमेशा मिलते थे, कई बार होता था बाबा से ये पूछेंगे ये पूछें, लेकिन बाबा के सम्मुख जाते थे तो कई बार ये भी होता था कि बस बाबा ने दृष्टि दी और सब भूल जाते थे क्या पूछना है क्या नहीं, क्योंकि बाबा की दृष्टि में ही इतना बल था, तो वो जैसे कि मन को एकदम शांत शीतल कर देता था। और मुझे एक और सौभाग्य साथ में मिला है अंतिम 2 दिन में मधुबन में रहने का, ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का, उसमें मैंने मन की पराकाष्ठा देखी, जो हम सबको भी धारण करनी है, और मुरलियों में भी आपने पढ़ा होगा बाबा ने कहा हुआ है कि मन के संकल्पों को भी जान लेना ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है। तो प्रैक्टिकल में देखा, हमेशा जब मिलते थे बाबा से पूछते थे, बाबा उत्तर भी देते थे, लेकिन 17 जनवरी और 18 जनवरी 1969 को हम यहाँ आ गए थे और हमने देखा कई मन में प्रश्न थे, बाबा से ये पूछेंगे योग के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, परिस्थिति के बारे में आदि आदि, लेकिन बस बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा तो कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट पहुंच गए थे, या कहें कि कर्मातीत अवस्था को लगभग प्राप्ति कर लिया था। तो बस बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के बाबा कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये अल्टीमेट अवस्था है मन की पवित्रता की, जो हमें कर्मातीत अवस्था के निकट तक ले जाएगी। और बाबा को ऐसा हमने लगभग 5-6 बार 2 दिन में देखा कि जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे ये स्थिति होती थी। तो मेरा यही कहना है इसमें कि स्थूल पवित्रता भी जो बताई गीता दीदी ने, वो सबको धारण करते करते अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य ये है कि मन की, स्वप्न की और वृत्ति की पवित्रता इस हद तक हो जाए कि हमारा मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, तब हम दूसरे के संकल्पों को परख करके उसको सिद्ध कर सकेंगे। तो इसलिए लक्ष्य यहाँ तक रहे पवार की पवित्रता के साथ साथ कि मुझे अपने मन में कोई भी एक भी व्यर्थ संकल्प भी ना हो, जिससे हम दूसरे के मन को परख करके अंत समय में वही सारे लोग आने वाले हैं और वो हमारे से वही एक्सपेक्ट करेंगे जो दुनिया में उन्हें कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य हमारा इतना महान, इतना ऊंचा हो कि मन में संकल्पों की व्यर्थता भी न हो और साथ ही साथ जो है दूसरे के संकल्पों को हम तभी पढ़ सकेंगे जब पवित्रता की पराकाष्ठा होगी। वो बाद में और आगे डिस्कस करेंगे। ओम शांति।
बहुत अच्छा। पवित्रता से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, भ्राता जी ने उसको एक्सप्लेन किया। जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है कि कई भाई बहन कहते हैं कि बस थोड़ा सा ही किया था, बस थोड़ा सा ही, तो उन्होंने कहा वो थोड़ा नहीं होता, थोड़ा होता है। तो असल में किसी भी मर्यादा का हम थोड़ा सा भी उल्लंघन करते हैं, अंश होता है, तो फिर वो वंश बन जाता है। तो चाहे वो भोजन की शुद्धि है या अन्य शुद्धियां हैं, अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, संपूर्णता को प्राप्त करें। भोजन के अलावा और कौन कौन सी चीजों का योग के साथ कनेक्शन है, तो उसमें एक पहनावा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय आप देखेंगे कि पहनावे को लेकर के बहुत प्रकार की डिस्कशन होती रहती है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों का पहनावा ऐसा बनाया है कि देखते ही लोगों को एकदम लगता है जैसे कोई ऊपर से उतरी हुई आत्मा है, कोई फरिश्ता है, कोई परी है। तो ब्राह्मणों को किस प्रकार का पहनावा पहनना है, उस दिन निर्मला दीदी सुना रहे थे कि आजकल लोग पार्टियों में जाते हैं तो पहले पार्लर में जाते हैं, पहनावा देखते हैं। इवन कि जब देवियों के नवरात्रों में डांस करने जाते हैं तो भी पहले पार्लर में जाते हैं। तो दुनिया का हाल क्या है, शरीर की सजावट के पीछे लोग किस सीमा तक पहुंच गए। और दूसरी तरफ हम बाबा के बच्चों को बाबा ने पहनावे के बारे में क्या क्या धारणाएं बताई हैं, उन पे गीता दीजी प्रकाश डालें।
ओम शांति। जो मूल बात है वो हम सभी समझ गए हैं कि मन को बहिर्मुखी बनाने वाली, देहाभिमानी बनाने वाली जो जो बातें हैं, हर बात को हमें ठीक करना होगा। तब तभी योग लगेगा। अक्सर कई कंप्लेन करते हैं कि योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, क्योंकि हम सिर्फ अभ्यास करते हैं, पर इन धारणाओं का अगर पालन नहीं करते हैं तो मन भटक जाएगा, बहिर्मुखी बन जाएगा। तो जैसे अन्न की बात हुई, इसी प्रकार पहरवाइश की बात है। हमारी ड्रेस का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ नए कपड़े भी जिस दिन आप पहनते हैं उस दिन आपका बुद्धि योग कितना ड्रेस में जाता है, बार बार अटेंशन जाएगा। रोज दो बार आईने में देखेंगे, उस दिन चार बार देखेंगे। तो ये चीज बॉडी कॉन्शियस बनाती है। इसलिए बाबा ने हमें स्वच्छ वस्त्र और मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनने के लिए कहा है। हमें देह को भूलना है, न कि देह प्रदर्शन करना है। जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, खुद का तो बुद्धि योग देह में जाता है, पर औरों का भी अटेंशन खींचवाते हैं, औरों को बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं। इसलिए हमें मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनने। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सफेद वस्त्र ही पहनने, क्योंकि आपका डबल रोल है। आपको घर गृहस्थ में रहते हुए योगी बनना है, तो प्रसंग अनुसार भल आप रंगीन कपड़े पहने, परंतु वो वस्त्र इतने चड़क भड़क वाले ना हो, परंतु मन को शांत और शीतल करने वाले हो। रंगीन कपड़े पहने परंतु मर्यादा पूर्ण पहने। आप खुद भी अनुभव करेंगे कि हम बहुत सज धज कर तैयार होते हैं तो हमारी बुद्धि वो मेकअप में, वस्त्रों में, गहनों में ही जाता है। तो प्रसंग अनुसार जो आवश्यक है वो पहनो, वो भी गृहस्थियों के लिए। कुमार कुमारियों को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर लक्ष्य है कि जीवन बाबा के श्रीमत पर पवित्र योगी बनाना है, तो हमें देहभान में लाने वाले वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता नहीं, स्वच्छ वस्त्र पहने। बल दो जोड़ी है आपके पास, लेकिन रोज धुलाई करके व्यवस्थित करके पहने। इसलिए बाबा ने देखो हम लोगों का यूनिफॉर्म कैसा बनाया कि जरा भी बुद्धि देह में न जाए। मन से वैराग्य होगा तो किसी भी बात में आप फैशन नहीं करेंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर। गीता दीदी की बात सुनके मुझे याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप रोज सफेद कपड़े पहनते हो, बोर नहीं होते हो? तो मैंने कहा था कि बोर ये सफेद कपड़े दूर नहीं करते, नए विचार दूर करते हैं। भीतर से रोज नए नए विचार पैदा करो। बाहर से कितने नए नए कपड़े पहनेंगे, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो वास्तव में कपड़े नहीं, लेकिन हम आत्मा को नए विचारों के रोज कपड़े पहनाएं तो बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। और जैसे कपड़ों का योग के साथ कनेक्शन है, ऐसे संघ का भी योग के साथ कनेक्शन है। और संघ केवल व्यक्ति का ऐसे नहीं होता कि भई हम किसके पास बैठे हैं, वो तो स्थूल संघ है, लेकिन आंखों से हम देखते हैं वो भी संघ है, कानों से जो सुनते हैं वो भी संघ है, मुख से जो खाते हैं वो भी संघ है, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं वो भी संघ है, किस प्रकार की हम सीरियल या कुछ देखते हैं वो भी संघ है, किस प्रकार के वातावरण में या प्रोग्राम्स में हम जाते हैं वो भी हमारा संघ है। तो बाबा ने कहा संघ तारे कुसंग बोरी। हम ब्राह्मणों का संघ कैसा हो, भगवान का संघ तो हमें है, लेकिन दुनिया में रहते हम अपने संघ का कैसे ध्यान रखें? आदरणीय भ्राता जी इस पे प्रकाश डालेंगे।
जब हम ज्ञान में आते हैं तब से ही आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हमारा रहन सहन खान पान संग आदि सब पहले दिन से ही बदलने लगता है और स्वाभाविक रूप से हमें बाहर के संग से थोड़ी थोड़ी विरक्ति होने लगती है। भले परिस्थितियां वश हमें परिवार के साथ, समाज के साथ, ऑफिस कार्यालय व्यवहार उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अंदर यही रहता है कि हमारा संग शुद्ध हो। और बाबा ने बताया भी है, जैसा संग वैसा रंग, वैसा होगी स्थिति। अब हमें ये देखना, ये तो इनिशियल स्टेज हुई, लेकिन क्लास 1, 2, 3 से बढ़ते बढ़ते वहीं तो रुक नहीं जाते, आगे भी चलते हैं, 10th 12th, फिर स्पेशल प्रोफेशनल इंजीनियर डॉक्टर भी बनते हैं आदि आदि। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि संग तो हमें, परिस्थितियां तो विभिन्न मिलेंगी जीवन में, जो जैसा गीता में भी कहा है और हम सब कहते हैं, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख जय पराजय, इन सब की अनुभूति कराने वाले संग मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, वातावरण मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ हमें लक्ष्य ये रखना है कि परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, मेरी स्वस्थिति सदा परिस्थिति से ऊंची होनी चाहिए, जिससे मैं परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। उदाहरण के तौर पे मैंने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को कई बार 93 इयर्स उम्र, माउंट आबू की सर्दी, कई बार बाबा को मुरली चलाते चलाते खांसी भी आ जाती थी, खांसी आते आते आंख भी गीली हो जाती थी। हम लोगों को लगता था बाबा को तो बड़ा कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है लगता है, लेकिन नहीं, उसके बाद बाबा की संगली के पास ही, और आपने तो हिस्ट्री हॉल देखा होगा ऊपर ना, देखा हो आप देखेंगे, तो उसमें हिस्ट्री हॉल में 3 संगलियां रहती थी, आजकल तो अक्सर 2 भी पड़ी रहती हैं, एक पर बाबा बैठते थे, बीच वाली खाली रहती थी, इधर वाली मामा के लिए रहती थी। और बस जब बाबा मुरली चलाते थे, कई बार जब खांसी आती थी, ऐसी स्थिति हो जाती थी, तो बाबा के संदली के पास ही श्री कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रहता था। और एक तरफ तो खांसी रूपी परिस्थिति आई है, तकलीफ हो रही है शरीर को भी और अंदर भी महसूसता हो रही है, देखने वालों को भी लग रहा है, लेकिन दूसरे क्षण बाबा कहते थे कि देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना तन है, पुराना मन है, आत्मा भी सतयुग से आते आते अब तमो प्रधान हो गई है, शरीर भी जो है विकारी तत्वों का बना है, विकार से उत्पत्ति हुई है, लेकिन देखो कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, वहां पर तत्व भी सतो प्रधान होंगे, शरीर भी नया होगा, आत्मा भी नई होगी, सब खुशी आनंद होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बस वर्णन करते करते बाबा का चेहरे पर ऐसी खुशी हो जाती थी चेहरा, और उसके बाद बोलते बोलते ही कहां खांसी गई वो पता भी नहीं होता था। और बाबा कहते थे बच्चों को भी सदा कोई भी परिस्थिति आए खुशी में ऐसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे करके भी बाबा बताते थे प्रैक्टिकली। और इतना उम्र में भी बाबा का चेहरा एकदम, ऐसी परिस्थिति, इतनी भयंकर खांसी, फिर भी खुशी में। तो अपने लिए परिस्थितियां आएंगी, अंत तक भी आएंगी, ये हमारे पेपर है, यही तो हमें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें अपने परिस्थितियों के किस प्रकार से उन्हें दूर करें और स्वस्थिति हमारी इतनी पावरफुल हो, वो हमें अपने लिए ही अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने को तैयार करना है। जैसे मोटे तौर पर तो गीता बहन जी ने बताया कि जब स्वस्थिति हमारी है, स्वस्थिति मजबूत कब होती है, जब हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखता स्वस्थिति बनाती है और बाहर मुखता परिस्थितियां आती हैं तो हम बाहर मुखी जब हो जाते हैं तो बाहर मुखी होने से हमारी स्वस्थिति कमजोर हो जाती है और हम परिस्थितियों से अक्सर करके पराजित हो जाते हैं, हार खा लेते हैं। तो इसीलिए अगर हर परिस्थिति में हमें विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि तभी तो हम कर्मातीत बन पाएंगे। हार जीत का खेल बाबा कई बार कहता है, ये तो चलता रहेगा लेकिन अंत तक नहीं। अगर अंत तक भी ये खेल चलता रहा, अंत तक भी हम हारते रहे जीतते रहे यार, तो आत्मा तो उतनी शक्तिशाली बनेगी नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, हाँ बाबा से शक्ति लेंगे तो क्या था स्लोगन, अगर मगर वाला था ना, अगर मगर से बचे रहेंगे। परिस्थितियां यानी अगर मगर, पास्ट की बात अधिकतर, अगर ऐसा होता तो ये होता, मैं परिस्थिति में ना हारता। तो इसीलिए अभी हमें ये देखते चलना है कि किसी भी परिस्थिति में हम पराजित ना हो, और वो तब होगा जब हम अपनी स्वस्थिति को और आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा रखेंगे कोई, और जितना ऊंचा रखेंगे स्वस्थिति से उतना ही परिस्थिति पराजित होकर चली जाएगी और हम सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर। संग रूपी परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करें, भ्राता जी ने सुंदर सुनाया, लेकिन आदरणीय गीता दीदी जी अपने अनुभव के आधार पे इसमें कुछ और ऐड करेंगे। गीता दीदी जी,
जैसे भाई साहब ने जैसा अन्न वैसा मन बताया था, जैसा पानी वैसी वाणी, तो वो अन्न की बात थी। ऐसे ही हमें बचपन से ये बातें सिखाई जाती है कि जैसा संग वैसा रंग। तो नौकरी धंधा समाज व्यवहार में अनेकों के संग में आना होता है, तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि वो तो हमारे हाथ में नहीं है। नौकरी धंधा करेंगे वहाँ सभी ज्ञानी योगी होंगे, ऐसा तो है नहीं। दुनिया में, बाजार में, समाज में भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाले लोगों के साथ संपर्क में आना पड़ता है, लेकिन किसके संग में रहकर रंग लगाना है और किसके संग में रहते हुए भी रंग नहीं लगाना है, ये अटेंशन और ये खबरदारी तो हमें रखनी है ना। भले सांसारिक कामकाज के लिए किसी के भी पास जाना पड़े, लेकिन हमें उनके संपर्क संबंध में आते हुए भी उनके रंग में नहीं आना है। हमें रंग वो ही लगाना है जो हमें योगी बनने में मदद करे। इसलिए अनावश्यक ऐसे लोगों के संग में हम न घूमे। ज्ञान नहीं था तो हम कहीं भी जाते थे, घूमते थे, उठते बैठते थे। अब तो हमारे पास समय है तो किसके लिए हैं? बाबा के लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं, सेवा के लिए हैं। इसलिए ज्ञानी योगी जो पक्के और सच्चे हैं उनको परखो और उनके संग में हमें रहना है, और गलत बातें किसी से भी हमें नहीं सीखनी है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा और पुरुषार्थ में बिजी रहो, ताकि हमें कहीं जाने का घूमने की इच्छाएं ही ना हो। हमारे लिए बाबा ने बेहद की सेवा दी है और जीवन के अंत तक हमें पुरुषार्थ करना। तो सच्चे मित्रों का संग करें। आपको पता है अच्छे घर के बच्चे भी गलत संग में कितने बिगड़ जाते हैं। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब आदतें दूसरों के संग में ही तो आती है। इसलिए हमें ऐसों का संग नहीं करना है और अपने को इतना मजबूत करना है कि कोई हमें कोई भी व्यसन के लिए कहे, क्लबों में जाने के लिए कहे, जुआ खेलने के लिए कहे, हमें ये गंदी आदतों का शिकार नहीं बनना है। बहन ने कहा ना कि हमें ज्ञान का साहित्य पढ़ना है, ज्ञान की किताबें पढ़नी है। अगर गंदे पुस्तक पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, फोटोज देखेंगे, तो हमारे मन में गंदी वृत्ति उत्पन्न होगी और गंदे संकल्प आएंगे। इसलिए हमें मन के अंदर अच्छी बातें भरनी है, प्रैक्टिकली अच्छे संग में रहना है, सत्य विचारों का संग करें, सत्य बातों का संग करें, ये है सत्संग, है ना। नहीं तो टाइम होता है, कहेंगे थोड़ा बाजार में घूम के आता हूं, फिर उल्टे सीधे संग में आते हैं। क्यों नहीं हम इससे तो अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छा अध्ययन करें, मुरलियों का अध्ययन करें और अपने जीवन को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। ओम शांति।
बहुत सुंदर दीदी ने हम सबको बहुत बहुत सावधानी दी और मुझे दीदी की बात सुन के बड़ी दादी की एक बात याद आई। किसी कुमार ने दादी को कहा था कि दादी, जब मैं रास्ते में जाता हूँ और पोस्टर देखता हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बड़ी दादी ने कहा था, मुट्ठे वो तो छोटा सा कागज है और तुम इतना बड़ा चेतन परमात्मा का बच्चा, कागज का प्रभाव तेरे पे आ जाता है, जड़ का प्रभाव तेरे पे आ जाता है। तुम चेतन होना तो ये चाहिए कि तुम्हारा प्रभाव उस पे पड़े। तो ऐसे दादी हमें अपने स्वमान में टिकाती थी। गुलजार दादी कहती थी कि जब ऐसा कुछ हो तो अगरबत्ती को याद करो। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, ऑफिस का वातावरण नेगेटिव है, वो कई लोग हैं, तो देखो एक छोटी सी अगरबत्ती है, उसे कूड़े के ढेर पे जलाओ तो किसका पलड़ा भारी होता है, कूड़े का या अगरबत्ती का। तो दादी कहती थी तुम अपने को अगरबत्ती समझो, वैसे कूड़े के ढेर पे रहो लेकिन फिर भी खुशबू फैलाते रहो। अब इसी से कनेक्टेड अगला सवाल है कि हम सब ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है कि सुबह क्लास कर लिया और काम पूरा हो गया। हम तो 24 घंटे के ब्राह्मण है, अर्थात दिनचर्या के कदम कदम में हमारा ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। तो हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी दिनचर्या में हमारी धारणाएं कैसी प्रकट हो, अचानक भी कोई व्यक्ति हमें देखे तो उसे ये लगे कि हाँ ये तो बहुत ही विशेष आत्मा है। तो दिनचर्या का और योग का आपस में क्या कनेक्शन है, भ्राता जी प्रकाश डालेंगे।
बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, क्योंकि सेंटर पर तो हम एक घंटा दो घंटा आते हैं, अब बाकी दिनचर्या तो हम सबकी अपने अपने कार्य अनुसार होती है, बाहर के वातावरण में होते हैं, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। लेकिन बाबा ने, या कहें प्रकृति के द्वारा ये जो शरीर भी मिला है ना, तो ये शरीर के अंदर भी एक विशेषता प्रकृति ने भरी हुई है और दिनचर्या का, सफलता का, हर चीज का आधार एक शब्द है, वो है बैलेंस। बैलेंस अगर हमारा ठीक होता है तो सब चीज ठीक होती है। और प्रकृति भी, भगवान ने देखो ऐसे शरीर को बैलेंस रखने के लिए दो टांगे दी हुई हैं। तो ये तो शरीर की बात हुई, और जो भी कार्य व्यवहार होता है, जो हम मस्तिष्क के थ्रू करते हैं, आत्मा करती है, तो उसमें बैलेंस के लिए भी भगवान ने या प्रकृति ने दोनों बैलेंस दिया, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। तो यानी कि ब्रेन के भी दो हिस्से होते हैं, एक बायां और एक दायां। और वो मोटे तौर पर ये समझिए कि बायां हिस्सा जो है वो हमारा लॉजिक काम के लिए है, जो प्रोफेशन है, पैसा है, घर का है, कारोबार है, सब चीज लौकिक से संबंधित, वो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का। और राइट पार्ट जो है वो आत्मा से संबंधित, यानी कि राइट पार्ट जो है ना दायां हिस्सा, वो ज्ञान का, जो आत्मा के सात गुण है, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति आदि, वो सब इससे गवर्न होते हैं। इसीलिए लेफ्ट और राइट का अगर ब्रेन का बैलेंस रहेगा, कर्मों का बैलेंस रहेगा, तो आज जो बाबा ने कहा, शायद आज की मुरली में था पहले, साधन और साधना का बैलेंस कहा ना। तो साधन तो ये हमें मिलते ही जाएंगे, हमारे दास दासी होते जाते हैं, जितना हम आगे बढ़ेंगे साधन तो बहुतायत में आएंगे, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हमारी साधना नहीं रही, तो या तो हम साधन में लिप्त होके हार खाने की संभावना है, या फिर अगर साधना हमारी इतनी हो कि साधन होते हुए भी वो हमारे कंट्रोल नियंत्रण में रहे, हमारी इच्छा अनुसार चलते रहे, तो वो साधन और साधना का बैलेंस, यानी कि लेफ्ट और राइट ब्रेन, बायां और दायां हिस्से का ब्रेन। तो इसीलिए देखो बायां हिस्सा कर्म का प्रतीक है, क्योंकि जीवन में कर्म करते हैं, और दायां हिस्सा योग का, तो कर्म और योग का बैलेंस। तो कर्म योगी होंगे जीवन में सफलता होगी। इसी तरह आज अक्सर लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो बिजी टाइम का जो है ये कर्म का प्रतीक, कर्म में ही तो बिजी होंगे कोई भी जो भी प्रोफेशन हो, तो कर्म इधर है बिजी, यहां से लेफ्ट ब्रेन से होते हैं, लेकिन राइट ब्रेन से इजी रहे। तो बिजी और इजी का बैलेंस रहेगा जीवन में, सदा सफलता, और हल्के भी होके कर्म करते रहेंगे जीवन में सफलता मिलती रहेगी। इसी तरह बाबा ने बोला कर्म भी करना है तो केयरफुल रहना है। तो ये जो है लेफ्ट पार्ट, ये केयरफुल का प्रतीक है, सावधान रह के कर्म करें, लेकिन केयरफुल के साथ साथ चीयरफुल भी। चीयरफुल माने खुश मिजाज, एकदम चेहरा हल्का चमकता हुआ, सफलता का सूचक। तो ये केयरफुल और चीयरफुल, तो पूरे बैलेंस जीवन में अगर रहता है, कर्म करें, लेकिन अक्सर अक्सर होता है जैसा गीता दीदी बता रहे थे, अटैचमेंट हो जाता है कर्मों से, परिवार से या कुछ, तो डिटैचमेंट के हुई हो, अटैचमेंट यानी कर्मों के साथ हम रहते हैं, सारे दिन भर कर्म करते हैं, लेकिन डिटैच होकर कर्म करें, उनसे न्यारे होकर, जिसे बाबा न्यारे और प्यारे कहता है, जब कर्म करेंगे तो न्यारे होकर कर्म करेंगे, तो स्वतः ही सर्व के प्यारे भी होते जाएंगे, और वो सर्टिफिकेट भी मिलता जाएगा जो बाबा ने 3 सर्टिफिकेट कहे है ना, आप सबको मालूम ही है। तो हाँ, प्रभु का सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट स्व से, और परिवार से सर्टिफिकेट, ये है। अब हमारा परिवार यही है, धीरे धीरे आप देखेंगे बाहर के लोगों से संबंध संपर्क बहुत कम होता जाता है, अपने परिवार से ही ज्यादा रहता है। लेकिन साथ में क्या होता है, जब अपने परिवार से होता है ना, तो बाहर का दुनिया वाला अगर कोई आदमी क्रोध करेगा, अहंकार होगा, झगड़ा करेगा, बोलचाल होगी, हम माइंड नहीं करेंगे, अज्ञानी है, दुनिया वाले हैं। लेकिन अपना भाई बहन अगर थोड़ा भी इसका उल्लंघन करता है तो क्या होता है, संबंधों में कटुता आ जाती है। और हाँ, मुझे दादी का लास्ट वर्ड एक बार ना, दादी की जब तबीयत लास्ट में थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, तो बड़ी बहनें और भाई लोग जाते थे, रोज दादी के साथ बैठते थे। तो एक बार एक ने पूछा कि दादी यज्ञ आप हमेशा कहते हो लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। बैलेंस रखना कई बार मुश्किल होता है, परिस्थितियां बता रहे थे, कोई भाई ऐसे होते हैं, कोई बहन ऐसे होते हैं, कोई परिस्थितियां। तो दादी ने कहा वो शुरू की स्टेज है लव एंड लॉ का बैलेंस, और अभी फार्मूला क्या है, लव इज लॉ, प्रेम स्वरूप बन के व्यवहार करेंगे, यही लॉ है, यही हमारा अंत में, हमें इससे ही विजय प्राप्त करनी है। लौकिक में कबीर दास का एक बात याद आती है, बाबा ने कहा सबसे स्नेह रखो, प्यार रखो, हम लोग पुरुषार्थ भी वही करते हैं, सबसे हमारी एक दृष्टि रहे। तो कबीर दास ने बोला है, वो आप सबने सुना होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति हो, इतना भी वो प्यार ना हो, इतना हो सबसे प्यार हो, लेकिन अगर किसी से खास प्यार हुआ जो बोलते हैं, तो क्या होगा, वो स्थिति नहीं रहेगी, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, कोई भी बात होगी बस मन उछलेगा, मैं जाके उससे शेयर करूं, उसको ये बात बताऊं, उसकी राय लूं, जिससे खास स्नेह होगा। और जिस अंत समय याद ही दो व्यक्ति आते हैं जिनसे या तो बहुत स्नेह हो या किसी से घृणा हो। और कई बार क्या होता है, हमारा परिवार ये है, कोई थोड़ा ऐसी बातें हो जाती हैं, दिल से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो अक्सर करके क्या होता है, सामने से आते भी हैं, मिलते भी हैं, एक इधर से निकल जाएगा, दूसरा उधर से, ओम शांति नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते, व्यवहार में थोड़ा अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। अरे यही परिवार तो हमारा सतयुग में रहेगा, भले नाम रूप दूसरा होगा, यहां पर ही अगर मन की दूरी हुई तो सतयुग में इकट्ठे कैसे रहेंगे, प्यार से कैसे रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो वही जानी है, शरीर अलग अलग सबका नाम रूप होंगे। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, बड़ी दादी की एक बात याद आती है, दादी एक बार बता रहे थे कि देखो संबंधों में कटुता के दो कारण है, क्योंकि संबंध मुख्य चीज है, हमारा परिवार ही ये है, तो इसीलिए दो बात, एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कभी भी कोई गलत फहमी हो, अरे भाई तुम्हें मालूम है फलाना भाई आपके लिए ये बोल रहा था, फलानी बहन का ये विचार है आपके लिए, आदि आदि, बस अपना दिमाग भी उल्टा घूमने लगता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो दादी ने कहा कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलत फहमी हो, तो जल्दी से जल्दी उसे दूर कर लें। साथ में जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, बहन जी या भाई जी 5 मिनट हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, और कोई बात है तो समय लेकर, नहीं तो अक्सर करके मिसअंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप, और दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप, बातचीत बंद हो जाती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पहले बोले, दूसरा एक्सपेक्ट करता है ये पहले बोले, और दूरियां अंदर की बढ़ती जाती हैं। तो हमें क्या करना है इसके लिए, वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीयता का नारा दिया है, और एक भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, कौन सा, जियो और जीने दो। अक्सर करके क्या होता है, जो बड़े होते हैं पुराने होते हैं वो समझते हैं भाई मैं पिता हूं, मेरा अनुभव है, बच्चा मेरे कहने से चले, बच्चा समझता है अरे ये तो कम्युनिकेशन गैप है, पिताजी को क्या मालूम आजकल के जमाने में क्या होता है। इसी प्रकार से सास बहू के बीच में, बाप बेटे के साथ साथ भाई भाई के बीच में जो ये भिन्नता हो जाती है, ये हमें हमारी अंतिम मंजिल से दूर कर देती है। लेकिन हमारा अंतिम मंजिल का लक्ष्य ही हमारी बुद्धि में सदा रहे, मुझे पवित्र, उस स्टेज से पवित्रता से बात शुरू हुई ना, तो मुझे मम्मा की एक बात याद आ गई बहुत अच्छी, भले हमारा उतनी पालना मम्मा के द्वारा नहीं हुई, एक बार ही मिलना हुआ एक बार, लेकिन अंतिम वो बता रहे हैं आपको कि मम्मा ने जिस दिन शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ा मम्मा, ऊपर गई सूक्ष्म वतन में, तो वहां पर साकर बाबा तो यहीं थे, क्योंकि 65 में मामा ने शरीर छोड़ा था, 69 तक बाबा हमारे साथ थे। तो ऊपर जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और शिव बाबा, उन्होंने मामा से पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो, ये पूरा जैसे मुरलियां आती है ना, उस समय मामा का ये पूरा वर्णन सबके पास गया था। तो मामा ने देखा, कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर नीचे हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी वहीं पर हैं, बच्चे भी हैं, सब तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, जाओ शरीर में प्रवेश करके देखो, अनुभव करके आओ कर्मातीत अवस्था क्या होती है। ऊपर से बाबा ने भेजा, सूक्ष्म वतन से मामा आई, यहां पर काफी समय रही, फिर उसके बाद मामा जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया कर्मातीत स्थिति का, फरिश्तेपन का, अव्यक्त स्थिति का? तब ये शब्द इतने पॉपुलर नहीं थे, फरिश्ता अव्यक्त कर्मातीत अवस्था का तो सबको मालूम। तो मामा ने कहा, बाबा नहीं किया। क्यों बच्ची, तुम्हें उसी के लिए तो भेजा था मैंने, और वहां तुम अनुभव करके नहीं आई? तब उन्होंने बताया, मामा ने कहा, बाबा मैंने तो गई, मैंने तो कोशिश करी शरीर में प्रवेश करके अनुभव करने की, लेकिन शरीर तो एकदम ठंडा हो गया था, शरीर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई अनुभव नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आ गई, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने एक बड़ी रहस्य की बात बताई उस समय, और जो पहला प्रश्न था ना बहन जी का पवित्रता से संबंधित, वो बाबा ने सबको स्पष्ट याद दिलाया। बाबा ने कहा, मामा अभी परम धाम तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परम धाम से आत्मा जिस स्टेज से अपनी सीट छोड़ करके आती है, भले सतयुग में आए, त्रेता आए, द्वापर, जब भी आए, लेकिन आत्मा जब आती है और पार्ट बजाती है, तो तब ही वो परम धाम वापस जा सकती है जिस स्टेज में उसने जो शरीर, जो वहां से सीट छोड़ी थी, उस सीट पर जाकर तभी बैठ सकती है जब उतनी पवित्रता की डिग्री उसने प्राप्त की होगी। तो अंत समय तक हमें पवित्रता की वो स्टेज लानी है जिस स्टेज पर, अब जो आत्मा त्रेता के अंत में आई या द्वापर, उसकी पवित्रता की स्टेज कम ही होगी, जो सतयुग के आदि, यहाँ तो आप सब और हम सब सतयुग के आदि वाले ही बैठे हैं, तो इसीलिए वो स्टेज की पवित्रता तक लानी है। और वो ये बैलेंस के द्वारा, और बाबा ने उस वक्त बताया था मामा को कि मामा अभी तो जाके बचा हुआ हिसाब किताब चुक तू करना है, लेकिन अंतिम समय के लिए, ये स्थिति के लिए अब क्या करना है, कोई भी काम हमारा पेंडिंग हम ना रखें। अधिक अक्सर करके कई बार हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बच्ची की ये करना है, समर्पण है, चलो और बाद में कर लेंगे, आदि आदि पोस्टपोन करते जाते हैं। तो बाबा ने यही बताया, अब लक्ष्य यही रखना है कि जो भी है उसको हम अंत समय तक पूरा करते रहें, उससे पहले पूरा कर लें, कोई भी काम को पेंडिंग भी न रखें और आगे के लिए टाले भी नहीं। तो उससे क्या होगा, हमारी संपूर्णता की स्थिति, और जो बहन जी ने बताया ना कि अंतिम समय की स्थिति, तो ये वाला जियो और जीने दो, ये है सतयुगी सिद्धांत। और आज का सिद्धांत क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है उसे ही जीने का अधिकार है, जो फिटेस्ट है, कमजोर को, गरीब को, उसको जीने का उतना अधिकार नहीं। ये तो जंगल रूल है, जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है, छोटा उससे छोटे को, लेकिन सभ्य सतयुगी संसार में हरेक एक दूसरे को जो जीने का वो है ना रास्ता, वो आगे भी बढ़ाता रहता है, और इस प्रकार से हमारा जीवन सदा काल के लिए खुशमय बन जाता है। ओम शांति।
सुंदर, बाबा के साथ साथ हमें मम्मा के भी अनुभव सुनाए और अभी दिनचर्या एक योगी की कैसी हो, उसको दिनचर्या में किन किन बातों का ध्यान रखना है, अनुभवी गीता दीदी थोड़ा और प्रकाश डालेंगे।
बाबा का ज्ञान मिला तो जीवन जीने का लक्ष्य भी बदल गया ना। पहले हम देह देह संबंध दुनिया के बारे में सोचते थे, अब हमारा लक्ष्य है इस दुनिया में रहते हुए भी हमें आत्मभिमानी बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो जब लक्ष्य बदलता है तो दिनचर्या भी हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि पहले हम भोगी जीवन में थे, देरी से सोते थे, देरी से उठते थे, हमारी दिनचर्या बहिर्मुखी और तामसिक थी। परंतु अब लक्ष्य योगी है तो दिनचर्या अंतर्मुखी और सात्विक होनी चाहिए। इसलिए रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है। जैसे हम हाथ पांव मुंह धोकर और बिस्तर साफ करके सो जाते हैं, ऐसे हमें बाबा की याद में बैठकर पूरी दिनचर्या का हिसाब किताब बाबा को बताकर मन बुद्धि को साफ करके बाबा की याद में सोना है। तो आप अनुभव करेंगे कि बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा की याद में उठेंगे। हमें उठते ही बाबा की याद आएंगी, बाबा की याद में दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। कहते हैं ना, सुबह उठकर सबसे पहले जिसका मुंह देखते हैं ऐसा दिन जाता है। पहले तो लोगों को, दूसरों को हम दोषित करते थे कि भाई किसका मुंह देख के निकला था, क्यों ऐसा हुआ। व्यक्ति को दोषित करते हैं, कोई बिल्ली को दोषित करते हैं, है ना, दूसरों को दोषित करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया, सुबह उठकर सबसे पहले मन की आंख से बाबा को देखना है, बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, बाबा से मिलन मनाना है। तो ऑटोमेटिक हमारा सारा दिन बाबा की याद में सफल रहता है। और दिन भर भी हम बीच बीच में 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का समय निकालकर फिर बाबा को याद करते रहे। इसलिए देखो, ट्रैफिक कंट्रोल का भी नियम बना है, कईयों ने अपने मोबाइल में भी ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम डाला है। तो दिनचर्या में 5-7 बार, जैसे सुबह 7 बजे, फिर 10:30, 12 बजे, 5:30, 7:30, 9:30, इस प्रकार लगभग 5-7 बार गीत बजता है। हम जहां भी हैं 3 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। उसके बाद और एक अच्छा सिस्टम निकला है, हर घंटे 1 मिनट बाबा को याद करें, हर घंटे। देखो कहने में कितना इजी लगता है, पर करके देखिए, कई बार भूल जाते हैं, पर लक्ष्य रखिए कि 1 घंटा, फिर 1 घंटे में, फिर हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करें, ताकि हम इस दुनिया में कर्मों में खो न जाएं, फिर बाबा से अटैच होते रहे, मिलते रहे। अमृत वेला योग, मुरली क्लास, फिर संध्या योग और रात को अपना चार्ट बताकर बाबा को याद करके सोए। अगर इस प्रकार की दिनचर्या में हम चलते हैं तो विशेष योग जब आप करने बैठेंगे तो मन को समेटना सहज हो जाएगा। अगर सारा दिन लौकिक, भौतिक, सांसारिक, दैहिक बातों में ही लगे रहे, बीच बीच में बाबा को टच नहीं किया, मिले नहीं बाबा से, तो बाबा याद नहीं आएगा, हमारा ऐसे ही दिनचर्या बीत जाएगी। इसलिए योगी जीवन की दिनचर्या, घर से निकलते हैं बाबा को बता के जाइए, वापस आते हैं बाबा को बताइए, बाबा थैंक यू, आपका बहुत साथ रहा, मदद रहा, कोई भूल हुई बाबा से सॉरी करें, दोबारा नहीं करेंगे, भोजन में बाबा को याद करें, ऑफिस में अपनी सीट पर, दुकान में बैठते हैं बाबा को याद करके बिजनेस शुरू करें, ऑफिस का काम शुरू करें। इस प्रकार अगर दिनचर्या बनाएंगे तो बहुत नेचुरल योगी जीवन का अनुभव कर सकेंगे और रोज की दिनचर्या सफल, ऑटोमेटिक ब्राह्मण जीवन सफल हो जाएगा, संगम युग सफल हो जाएगा, तो हमारा पूरा ड्रामा भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।
बहुत सुंदर गीता दीदी ने जैसी दिनचर्या बताई, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो 2009 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला था कि रोज का हिसाब जो रोज चुकतू कर देते हैं तो उन्हें फिर धर्मराज के सामने जाना ही नहीं पड़ेगा, रोज का रोज खाता क्लियर हो जाएगा। अभी हम अंत की ओर जा रही हैं पैनल में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल हम देखते ही हैं कि हमारे पास मुरली हमारी जेब में, हमारे हाथों में है, तो कई भाई बहन क्या सोचते हैं कि मुरली तो पढ़नी है ना, तो घर में मुरली पढ़ लेते हैं। मुरली पढ़ने का नियम है, बाबा ने कहा हाजिरी लगानी, हाजिरी तो लग गई, लेकिन घर में मुरली पढ़ना और सेवा केंद्र पर जाकर मुरली पढ़ना, दोनों में कितना अंतर है और दोनों के आधार पे हमारा योग कौन सी अवस्था में ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि हम योगी जीवन वाले हैं और मुरली उसका आधार है, तो हम मुरली की स्टडी कैसे करें जो हम पक्के योगी बन जाएं? इस पे पुनः भ्राता जी प्रकाश डालेंगे और बाद में गीता दीदी भी इसे क्लियर करेंगे।
मुरली हमारा प्राण है, हमारी खुराक है और हमारी सब कुछ ईश्वरीय जीवन की एक आधार है, इसीलिए मुरली पर तो विशेष ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। इतने वर्ष के, लगभग 60 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुरली एक बार में तो कंप्लीट समझ में नहीं आती, भले अक्सर कह देते हैं वही बात मुरली में होती है, लेकिन कम से कम 3 बार तो हम ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर बार लगता है कि अरे ये पॉइंट तो इस बार ही, तीसरी बार ही मुझे समझ में आ रही है, पहली 2 बार यानी हमारी बुद्धि कहीं कोई कार्य में, कोई कार्य पेंडिंग हो, कहीं भी बुद्धि भाग जाती है। इसलिए दादियों को तो हम देखते थे 4-4, 5-5, 6 बार भी पढ़ते थे, तब हमारी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से तो पहला तो एक यही अनुभव होना चाहिए कि मुरली पढ़ने के लिए हम मेंटल प्रिपरेशन कर लें, और वो मेंटल प्रिपरेशन हमारी हो जाती है अमृत वेला योग से। अगर प्रिपेयर नहीं होंगे, लौकिक में भी घर में पढ़ाई करते हैं, अगर कोई खेल करके आया, क्रिकेट खेल करके, कोई पिक्चर देख करके और तुरंत पढ़ने बैठे तो वही बात घूमती रहेगी। इसीलिए अमृत वेले का योग से हमारा पूरा मेंटल क्लियरेंस हो जाता है। तो उसके बाद जब मुरली सुनते हैं, चाहे सेवाधारी वाली सुने, चाहे 7 बजे आकर सुने, वो मुरली दिमाग के अंदर बैठने लगती है। और दूसरी बात ये बताया, ड्रामा में हर चीज का कोई ना कोई रहस्य होता है। ये भी पिछले 2 वर्षों में भी जो देखा, कोविड की बात, जहाँ ऑनलाइन की बात चली, मुरली घर में ही बैठ के लोग सुनने लगे, ये भी बहुत आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है गली गली में सेंटर होंगे, घर घर में आप ये मुरली सुनेंगे, घर घर में सेंटर गीता पाठशाला होगी। तो ये तो ऑनलाइन से हो ही गया, लेकिन इस हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। तो एक स्टूडेंट जो शार्प स्टूडेंट होते हैं, अक्सर करके देखा गया है कि जब भी पढ़ते हैं, हम सब भी स्टूडेंट कभी ना कभी पीरियड में रहे हैं, एक बार में तो कोई कोर्स समझ आता नहीं, उसको रिवाइज करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, किताब बंद करके मेंटली रिकलेक्ट करते हैं, तब एग्जामिनेशन के हिसाब से हमारी तैयारी हो पाती है। इसीलिए हमें जो भी तैयारी करनी है, अंतिम पेपर एग्जामिनेशन के हिसाब से करनी है, तो और वो मुरली ही करा सकती है। तो मुरली को आप जब पढ़ेंगे, मेरा तो ये हम्बल सजेशन है, उसमें कुछ अंडरलाइन भी जरूर कर लें, क्योंकि पूरी मुरली तो याद रह नहीं सकती, लेकिन कुछ 4-5 पॉइंट याद रहते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है मुरली की, गौर से सुनिएगा, कि जो भी पेपर उस दिन आने वाला होता है, परीक्षा आने वाली होती है, उसका बहुत क्लियर कट हिंट हमें मुरली से मिल जाता है। आज ये परीक्षा हमारे सम्मुख आने वाली है, भले कोई नाम वो नहीं लिखा होता, लेकिन मुरली के अंदर आ जाती है तो हम मेंटली अगर कोई भी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो सफल होते हैं, और परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सफलता उस अनुसार कम मिलती है। तो इसीलिए ये मुरली अमृत वेले ही। और दूसरी बात, मुरली के अंदर एक घर पे बैठ के सुनो, पढ़ो, एक संगठन में आके सुनते हैं तो संगठन का जो वातावरण होता है, वो वातावरण बहुत बहुत मदद करता है। तो इसीलिए ध्यान भी रहता है योग में भी और मुरली में भी। तो मैं समझता हूँ ये भी समय की बलिहारी थी, और बाबा ने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ रिहर्सल हुई है कोविड की, अभी तो असली पेपर कोविड का, कोविड माने कोई भी बीमारी का, कोई भी परिस्थिति का आना बाकी है। और बाबा ने हिंट तो दिया, जब सब पेपर एट ए टाइम होंगे, 5 तत्वों के पेपर भी होंगे, अभी तो भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ गई, जब 5ों तत्वों के भी होंगे, सिविल वार के भी होंगे, और ऊपर से बॉम्ब वगैरह गिरेंगे और बादल फटेंगे, तो ये सारे पेपर जब एट ए टाइम होंगे, हमें उसके लिए अपने तैयारी करनी है। तो एक तैयारी तो क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी तैयारी तो ये है, हमें हम ब्राह्मणों का इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको भी प्राप्त है, ब्रह्मा की तरह, भीष्म पितामह को जैसे था ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा हमारे भीष्म पितामह, तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत क्लियर कट आइडिया हो गया था, तभी तो ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक सब तैयारी कर ली। और अंतिम दिन भी जब लास्ट क्लास कराई, रोज 9 बजे क्लास होती थी, बाबा ने पहले ही कह दिया आज 7 बजे ही क्लास में आ जाना, सब भोजन करके आए, बाबा को आइडिया था उसके बाद भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास करा के बाबा जाएगा और छुट्टी ले लेगा। बाबा ने सारे पेंडिंग काम, वैसे तो सभी 2 वर्ष पहले से ही बाबा काफी समेट रहे थे, हमें याद है पहले बाबा कहा करते थे तैयारी के लिए कि बच्चे मंशा में तूफान तो अंत तक आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, इससे विकर्म बनते हैं। फिर बाबा और आगे बढ़े, बच्चे वाचा से भी किसी को दुख नहीं देना है, वाचा से दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत क्लियर कट बाबा ने कहा है। और मरेंगे दुखी होकर माने अंतमति सोगति वैसी हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। फिर बाबा और सूक्ष्म, मंशा में भी तूफान नहीं, मंशा में भी किसी के लिए कोई निगेटिव फीलिंग ना हो, और मंशा के बाद बाबा स्वपन तक और वृत्ति तक भी ले आए। तो अभी वही समय चल रहा है, आपने खुद भी अनुभव किया होगा वाइब्रेशन का, देखते ही पता चल जाता है किसी के सम्मुख आते हैं ये अंदर कैसा है बाहर कैसा है। इस संदर्भ में बस मैं एक बात बता के पूरा करना चाहूंगा, मुझे रशिया जाने का सौभाग्य जब मिला था तो वहां बहन जी ने उस भाई को बुलाया था जिन्होंने किरलियन फोटोग्राफी का निर्माण किया। किरलियन एक बड़ा साइंटिस्ट होके गया है, तो उसने ऐसा कैमरा इजाद किया कि फोटो के साथ साथ उसके ऑरा का भी फोटो आ जाता है। आपने ऑरा देखा है ना, जो मंडल प्रकाश मंडल होता है देवी देवताओं के पीछे दिखाते हैं ना, तो वो मन की अवस्था का प्रतीक है। जैसा जिसकी मन की अवस्था होती है वैसा उसका ऑरा होता है, लाइट का ताज होता है। अगर मन बहुत शुद्ध है, पवित्र है, शुभ भावना शुभ कामना वाला है, तो वो गोल्डन व्हाइट येलो ऐसा होता है। और मन के अंदर विकार है, काम क्रोध लोभ आदि, तो वो डार्क कलर का होता है और हेजी होता है उसकी बैकग्राउंड वगैरह, और बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। तो वहां पर वो वर्ष रशिया वालों ने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया होता हुआ था, इसलिए खास हमारा वहां जाना हुआ और काफी दिन 12-13 दिन रहना हुआ। उन भाई के साथ बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, उन्होंने एक एक अंग का हमारा भी ऑरा लिया, और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई जनरल कि मेरे पास विश्व भर के लोग आते हैं, सब धर्मों के लोग आते हैं, और भारत का भी आर्य समाज के भी स्वामी नारायण ब्रह्मा कुमारी सब आते हैं, लेकिन एक बात बताते हुए मुझे बड़ा खुशी होती है, मैंने सबके ऑरा निकाले हैं, लेकिन जितना ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा स्पष्ट और क्लियर होता है उतना किसी का नहीं होता। ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा हमारी मंशा को भी जो क्लियर कर रहा है ना, दुनिया में बाहर क्या चाहे जितना भी रूप हो प्रभाव हो, लेकिन मन से भी वो उतने पवित्र, हमारा ये प्रयास रहता है कि मन में भी कोई विकार का संकल्प मात्र भी ना हो। तो इसीलिए बाबा ने यह भी कहा है कि अंत में प्रत्यक्षता तभी होगी जब विज्ञान आपकी सब बातों को प्रत्यक्ष करेगा, वो स्वीकार करेगा कि ये है, तब दुनिया वाले भी ये कहेंगे। अभी तो ये भी कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले भी हैं, एक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ब्रह्मा कुमारी वाले, लेकिन अंत में सबका जानने के बाद क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी ही एक है जो सत्य ज्ञान देते हैं, और ये विज्ञान सिद्ध करेगा। इसीलिए हमें बाहर की धारणाओं के साथ साथ जो यहाँ रहन सहन खान पान सब कुछ डिस्कशन हुआ वो सब तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। अल्टीमेट लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमें तन और मन, इसीलिए दादी को, हाँ दादी की जानकी दादी को एक बार बहुत तबीयत, जब 1999 का 31 दिसंबर था, दादी विदेश से खास आए थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई लोटस में अहमदाबाद में, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिसे बुलाना है बुला लो। तो ये बात 31 दिसंबर को, तो बाबा आते हैं, तो बाबा आए हुए थे, और बाबा को दादी प्रकाशमणि जी और निर्वैर भाई ने जब मिले बताया, बाबा डॉक्टरों ने ऐसा जवाब दे दिया है, दादी की तबीयत तो बहुत खराब है दादी जानकी की। तो बाबा ने जस्ट देखा, कहा नहीं बच्चे उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, तो इसलिए कुछ नहीं होगा। और ये है 1999 31 दिसंबर, उसके बाद दादी लगभग 20 साल तक रहे, पूरे विश्व भर की सेवा की, और आप सब जानते हैं कैसे। तो हमें मन जीते जगत जीत भी बनना है, मन के साथ साथ ये तन जीते जगत जीत, प्रकृति जीते जगत जीत, तो ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य रहे कि जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश इन तत्वों का भी जब सहयोग रहेगा तब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे और तब हम अल्टीमेटली कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और ये तभी होगा, मन के आधार पर होगा, जो बाबा ने कहा है कि क्लीन बुद्धि और क्लियर बुद्धि वो रहे, और साथ साथ तन हमारा इतना पवित्र हो जाए कि तन हमारे इतने पवित्र मन को स्वीकार कर सके, और तब स्वीकार करेगा तब मन जो है यानी आत्मा इस तन से छुट्टी लेकर के जा सकेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा गए लास्ट में मुरली चला के, बाबा ने कहा दरवाजे के पास, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, क्यों? क्योंकि बाबा को पूरा, वो तो बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में। लेकिन मेन चीज ये है, हम भी अपनी इच्छा से अगर शरीर छोड़ेंगे तो माला का मणका, विजयी मणका बन के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर, कैसी हमें इच्छा मृत्यु प्राप्त करनी है, प्रकृति जीत, मन जीत, माया जीत बनना है, मुरली के आधार पे ये सब चीजें हमें प्राप्त होंगी। और अभी हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुनना क्यों अनिवार्य है, दीदी जी उस पे प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति। बाबा का घर और लौकिक घर, अंतर है ना दोनों में? हाँ, घर घर है, सेंटर सेंटर है, इसलिए सेंटर पर जाते हैं तो बाबा याद रहता है। तो स्थान का महत्व, वो स्थान सेंटर बना ही है ज्ञान योग का, पुरुषार्थ करने, सेवा करने, तो वो स्थान का महत्व, वायुमंडल का महत्व और संगठन का महत्व। एक अकेले ऑनलाइन सुनते हैं तो देरी से उठेंगे, ऐसे ही ठीक ठाक होके बैठ गए। सेंटर में जाना है तो नियम बना रहेगा कि हमें जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर सेंटर में जाना है। कहीं तो चाय पीते पीते मुरली सुनते हैं, तो एक गॉडली स्टूडेंट बनकर मुरली हम सुने डिसिप्लिन से, तो उसका प्रभाव अलग होता है ना। एक अकेला आलस्य करेगा, अलबेला हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, परंतु संगठन में नियम से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर शिस्त अनुशासन बना रहता है, हमें फ्रेशनेस रहेगी। हम भाई बहने योगी आपस में मिलकर क्लास में बैठते हैं तो हरेक के योग का, निश्चय का, लगन का एक बल महसूस होता है, हमें मदद महसूस होती। इसलिए ऐसे नहीं ऑनलाइन सुन लिया, फिर तो ऑनलाइन खा लो, प्रैक्टिकल क्यों खाने के लिए बैठते है ना? ऑनलाइन क्यों? प्रैक्टिकली हमें बाबा के घर में जाना है, वहां के संगठन का, वायुमंडल का, स्थान का बल अनुभव करना है, और हमारी निमित्त बहने अपने अनुभव से मुरली सुनाएगी, समझाएगी, तो और क्लैरिटी होती है। इसलिए हमें गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा की यूनिवर्सिटी में जाकर बाबा के महावाक्य सुनना है और अपने आप को और आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है।
तो हम सबको अच्छे से समझ में आ गया कि हमको संगठन में मुरली सुननी है। अभी एक प्रश्न है पैनल में तो नहीं था ये, लेकिन किसी माता ने दिया है, दो सगे भाई हो के भी एक दो से बात नहीं करती, क्या किया जाए, तो उसका भी समाधान कर दीजिए, आप बता दीजिए।
देखो हरेक के स्वभाव संस्कार हिसाब किताब अलग अलग है। बाबा के ज्ञानी बच्चे हम हैं, तो हमें आपस की कोई भी भूले हैं, अनबन है, मन मुटाव की बातें हैं, उनको समाप्त कर हमें प्यार से चलना है। बाबा हम बच्चों को प्यार से चलाते, कितनी हमारी भूले हैं, गलतियां हैं, फिर भी बाबा हमसे तो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हमें भी बाबा जैसा बनकर प्यार से आपस में चलना है, तभी लोग कहेंगे कि ये आत्माभिमानी है, ये ज्ञानी आत्मा है। आपस में नहीं बोलते हैं तो लोगों के भी ध्यान पर आ जाता है, ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। माताएं बहनें घर में अगर ऐसा देखते हैं तो बाबा कहते हैं अपना शुभ भावना दो, योग का वाइब्रेशन दो, ताकि सब हिल मिल के चले। हाँ, हमें किसी की गलत बातें सीखनी नहीं है, पर किसी की गलत बातें मन पर भी नहीं रखनी है। इसलिए प्रयास करें, भाई भाई हो या देरानी जेठानी हो या सास बहू हो, कोई भी रिलेशन हो, हम सब के साथ प्यार से चले, ज्ञानी बनकर चले, शुभ भावना से चले।
बहुत सुंदर, हमने हमारे दोनों पैनलिस्ट से बहुत नई नई बातें सीखी, बहुत प्रेरणाएं प्राप्त की। इसके लिए आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आदरणीय गीता दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 8 बजे तक हम मिलकर के संगठित योग करेंगे।
जल्दी तो नहीं है ना, भूख लग गई है नहीं ना? जिनको बहुत भूख लगी हो वो भले जाएं भोजन पर, बाकी सब बाबा की याद में हम भट्टी का समापन करेंगे। आप सभी ने बहुत रुचि से और एक्यूरेट दिनचर्या अनुसार बहुत अच्छी तपस्या की, ज्ञान योग की गहराई पाई, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी ज्ञान योग के बल के साथ बाबा को लेकर कल फिर आप सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे बाबा की प्रत्यक्षता करने। ओम शांति।
वो ऊपर कैसे सजा खाती है, क्लैरिटी की तो थी कि आत्मा को अनुभव होता है कि भाई मुझे मतलब सजा मिल रही है, आत्मा जैसे प्रेम का अनुभव करती है कि मुझे प्रेम मिल रहा है बाबा की किरणों से, बाबा की उपस्थिति से, तो सजा भी अनुभव होती है कि भाई मेरा ये पाप कर्म है, वीडियो दिखाया जाएगा और इस पापक्रम के अकॉर्डिंग अब मुझे शरीर तो है नहीं, आत्मा उसको केवल अनुभव करती है सेकंड में कि मुझे सजा मिल रही है। अनुभव है ये, कोई डंडा नहीं है, कोई कोड़ा नहीं है, कोई उस प्रकार से सजा नहीं है, लेकिन वो अनुभव ही है कि मुझे सजा मिल रही है।
महसूसता होती है, कहते हैं ना अंत समय जीवन भर के कर्म बुद्धि के सामने आते हैं, तो जो गलत बातें हमने संस्कार वश कर ली, संग वश कर ली, उस समय फिर वो महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि कोई तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, जो गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वो सारा भय बताया जाता है ताकि इंसान जागे, पर भय से आत्मा नहीं सुधरती है, समझ से ज्ञान से सुधरती है। इसलिए उस समय बाबा की शिक्षाएं याद आएगी कि बाबा हमें सावधान करते थे मुरली में, फिर भी हमने ऐसे ऐसे कर्म किए, तो वो ग्लानी, वो पीड़ा महसूस होगी। सारा दिन अच्छा जाता है तो संध्या तो ऑटोमेटिक अच्छी होनी चाहिए, किस बात की परेशानी होती। माना अंदर में कोई सूक्ष्म भय है, बाबा को साथी रखो और अपने आप को याद कराओ कि अब तो बाबा साथ है, हम योगी हैं, शक्ति हैं, पवित्र है, कोई भी आत्मा, कोई भी भूत प्रेत, कोई कुछ भी हमें कर नहीं सकता है। हर आत्मा का कल्याण हो जाए, हर आत्मा बाबा से जुड़ जाए और मैं भी बाबा से जुड़ी रहूं, ऐसा अपने आप को याद करा। अमरावती और वरुड़ के भाई बहने कोई यहाँ बैठे हैं? हाँ तो कृपया उठिए, ये भाई आए हैं बुलाने आप सबको। जहाँ यात्रा भोजन मिलता है वहां पहुंच जाइए जल्दी से। बाकी सभी बैठे, बाबा की याद में हम बैठेंगे।
खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है तेरी याद से। बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है।
एक दिव्य शक्ति मैं